सुबह का नाश्ता घर में हमेशा एक रस्म की तरह होता था। एक तय समय, तय जगह और तय चेहरे। बड़े डाइनिंग हॉल में लंबी मेज सजी थी। सफ़ेद मेजपोश पर चाय की भाप उठती केतलियाँ, गर्मा गर्म पराठों की खुशबू और कटोरियों में रखी सब्जियाँ, सब कुछ अपनी जगह पर था। सुषमा देवी सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठी थीं। उनका चेहरा हमेशा की तरह संयमित था, लेकिन आँखें हर हलचल पर नज़र रखी थीं। उनके दाहिने रत्ना देवी थीं, हल्की सी थकान के बावजूद सधी हुई गरिमा के साथ। बाईं ओर शकुंतला, जिनकी आदत थी हर बात में टिप्पणी करने की, और उनके पास रम्या, जो आज भी अपनी कॉफ़ी में चीनी की मात्रा पर सोचती दिख रही थीं। मेज़ के दूसरे सिरे पर विशाल और आर्यन आमने सामने बैठे थे। विशाल अखबार पलट रहा था, आर्यन चम्मच से प्लेट के किनारे अनजाने में टकटक कर रहा था, जैसे भीतर कुछ खटक रहा हो। अदिति उनके पास थी, आंखों में शरारत और चेहरे पर वो मुस्कान जो कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाती है। श्यामली और मधु चुपचाप खाना परोस रही थीं। श्यामली के चेहरे पर रात का सुकून अब भी ठहरा हुआ था, वो सुकून जो आंखों के किनारों पर हल्की सी चमक बनकर रह जाता है। वो हर प्लेट के पास रुकती, ज़रूरत भर परोसती और आगे बढ़ जाती, लेकिन उसकी चाल में आज एक हल्कापन था। अदिति ने उसे देखा, एक सेकंड भी नहीं लगा उसे समझने में। उसने कोहनी से श्यामली को बहुत हल्के से कोहनी मारी, ऐसे जैसे पूछ रही हो, क्या बात है, आज इतनी खुश? श्यामली ने नज़रें झुका लीं, होठों पर मुस्कान दबा ली। आर्यन की नज़र पड़ गई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अदिति, वो चिड़चिड़े स्वर में बोला, नाश्ते की मेज़ है, नाटक का मंच नहीं। अदिति ने मासूमियत तोड़ ली, मैं तो बस प्लेट ठीक कर रही थी। आर्यन ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी छोटे बच्चे को डांट रहा हो, तुम्हारी बस हमेशा ज़्यादा होती है। इसी बीच दरवाजे पर हल्की आहट हुई, विश्वनाथ अंदर आया। वो हमेशा की तरह सधा हुआ था, लेकिन आज उसकी चाल में जल्दी नहीं थी। उसकी नज़रें सीधे मेज़ पर बैठी रत्ना देवी की ओर नहीं गईं, जैसा वो रोज़ करता था। उसकी नज़रें कमरे को पार करती हुई श्यामली पर ठहर गईं। सुषमा देवी ने ये देखा, रत्ना देवी ने भी। श्यामली उस वक्त प्लेट रख रही थी, उसकी उंगलियाँ पल भर को ठिठकीं, जैसे उसे किसी ने पुकारा हो बिना आवाज़ के। उसने सिर उठाया, उनकी नज़रें मिली। एक क्षण के लिए मेज़ पर बैठे लोग, बातें, आवाज़ें सब पीछे छूट गए। मधु ने खासकर सन्नाटा तोड़ा, ठाकुर साहब चाय, उसने पूछा। विश्वनाथ ने सिर हिलाया, लेकिन कदम श्यामली की ओर बढ़ गए, वो उसके पास पहुंचा। रुको, उसने बहुत सहजता से कहा। श्यामली रुक गई, उसने उसका हाथ पकड़ा, ऐसा पकड़ना जिसमें हक जताना नहीं भरोसा होता है। तुम भी बैठो, उसने पास की कुर्सी खींचते हुए कहा, सबके साथ खाओ, बाकी काम के लिए नौकर हैं, वो देख लेंगे। कमरे में एक साथ कई सांसें रुकीं, श्यामली हड़बड़ा गई, लेकिन वे कि नहीं, विश्वनाथ ने बात काटी, स्वर में कोई कठोरता नहीं थी, बैठो। वो बैठ गई, सुषमा देवी के हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट से टकराया, एक हल्की सी आवाज़, लेकिन उनके मन में उठे गुस्से की गूंज कहीं ज़्यादा तेज थी। ये क्या तरीका है, उन्होंने मन ही मन सोचा, सबके सामने। रत्ना देवी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा विशु, तुम कल कब आए, पता ही नहीं चला, तुम हमेशा ऑफिस से आकर पहले मुझसे मिलते हो और रात के खाने पर भी नहीं आए, तुम जानते हो हम तुम्हारे बिना रात का खाना पसंद नहीं करते। विश्वनाथ का चेहरा तन गया, माँ, उसने संयम के साथ कहा, मैं बहुत थक गया था, इसलिए आपसे मिलने नहीं आया और डिनर भी उसी वजह से नहीं किया। उसके शब्दों में सफाई कम, थकान ज्यादा थी। अदिति ने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, उसने हंसते हुए कहा, अरे दादी, आप भी ना, ये दोनों तो लव बर्ड्स हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ रहना ही तो चाहेंगे। आर्यन का सब्र टूट गया, बस, उसने तेज आवाज में कहा, हर बात में मजाक जरूरी है क्या? उसने अदिति की ओर देखा, मैंने क्या कहा, यही कि तुम्हें हर बात में टांग अड़ानी है, आर्यन बोला। श्यामली कुर्सी पर सिकुड़ गई, उसकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। विश्वनाथ ने ये देखा और वही उसकी चिढ़ का कारण बन गया, वो कुर्सी से खड़ा हुआ, बस, उसने कहा, इस बार उसका स्वर सख्त था, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। विशु, रत्ना देवी ने कहना चाहा, लेकिन वो मुड़ चुका था, उसने मेज की ओर एक बार भी नहीं देखा, उसकी नजरें सिर्फ श्यामली पर थीं। चलो, उसने कहा। श्यामली बिना एक शब्द बोले उठ खड़ी हुई, आर्यन भी तमतमा उठा, वाह, उसने व्यंग से कहा, अब पूरा नाटक साथ में ही होगा क्या? वो भी कुर्सी से खड़ा हो गया, अगर ये तरीका है तो मैं भी नहीं बैठता। विशाल ने अखबार मोड़ा, कमरे में तनाव साफ महसूस होने लगा। सुषमा देवी ने होंठ भींच लिए, शकुंतला ने सिर हिलाया, रम्या ने कॉफी का कप नीचे रख दिया। विश्वनाथ दरवाजे की ओर बढ़ गया, श्यामली उसके पीछे पीछे चली। आर्यन कुछ पल खड़ा रहा, फिर वो भी बीच में ही उठ गया, जैसे किसी ने उसके भीतर के धागे खींच दिए हों। कमरे में सन्नाटा फैल गया। नाश्ते की मेज पर खाना अब भी गर्म था, लेकिन किसी को भूख नहीं थी। तीन लोग तीन अलग दिशाओं में, और एक परिवार जो पहली बार एक ही कमरे में होते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर लग रहा था। शकुंतला ने चम्मच प्लेट में रख दिया, आवाज़ जानबूझकर तेज नहीं थी, फिर भी सन्नाटे में गूंज गई, इस घर में हो क्या रहा है, उसने खिन्न स्वर में कहा। सुबह का नाश्ता भी अब शांति से नहीं हो सकता। उसकी नजर पहले सुषमा देवी पर गई, फिर रत्ना देवी पर। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और बच्चे ऐसे उठकर जा रहे हैं जैसे कोई मायने ही ना हो। सुषमा देवी ने ठंडी सांस ली। आजकल हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है, ना नियम रहे ना लिहाज। रत्ना देवी कुछ कहने को आगे आई, फिर रुक गई। उनकी आंखों में चिंता थी। विशु ऐसा पहले नहीं था, उन्होंने धीमे से कहा। वो कभी बात अधूरी छोड़कर नहीं जाता था। शकुंतला ने सिर हिलाया। बात अधूरी नहीं है माँ, बात बदल रही है। और जब घर में बातें बदलने लगे तो रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अदिति चुपचाप प्लेट में देखती रही। उसकी शरारत कहीं गुम हो चुकी थी। विशाल ने अखबार एक तरफ रख दिया। शायद हम सबको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए, उसने कहा। जबरदस्ती से कोई चीज संभलती नहीं। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है। ये वो शांति थी जो किसी आने वाले तूफान से ठीक पहले उतरती है।